دیکھیے بھائی آگے سبق کتاب پر. العجمت وهي كون اللفظ مما وزعه غير العرب ولتاثيرها في منع الصرف شرطان شرطها الاول ان تكون علميه اي منصوبه الى العلم في اللغه العجميه بان تكون متحققه في ضمن العلم في العجم حقيقه كابراهيم. گزشتہ سبق میں ہم تانیث کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ تانیث لفظی بتا جو ہے وہ غیر انصراف کا سبب بنے گی اور اس کے لیے شرط جو ہے وہ علمیت ہے, اور تانیث معنوی بھی اسی طرح ہے یعنی اس میں بھی علمیت شرط ہے. البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ تانیث لفظی بتا کے اندر علمیت شرط ہے وجوب غیر انصراف کے لیے, یعنی جب تانیث بتا آ جائے اور پھر علمیت بھی آ جائے تو پھر لفظ کو وجوباً غیر منصرف پڑیں گے, جبکہ تانیث معنوی کے اندر علمیت جو ہے غیر انصراف کے جواز کی شرط ہے بھائی, یعنی اس لفظ کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہو جائے گا جب تانیث معنوی کے ساتھ علمیت آ جائے. اور وجوب کے لیے ایک اور شرط پوری ہونی چاہیے, اور وہ یہ کہ وہ لفظ جو ہے یا تو تین حروف سے زائد ہونا چاہیے, اور اگر زائد نہیں ہے صرف تین حروف والا ہے تو پھر کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے, اور اگر درمیان والا حرف بھی متحرک نہیں ہے تو پھر کم از کم لفظ کو عجمی ہونا چاہیے. ان تین میں سے کوئی ایک بات پوری ہو جائے گی تو اب یہ غیر انصراف کا سبب بنے گی وجوباً بیتانی سے معنوی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تانیث معنوی کے ساتھ اگر کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو کیا پھر بھی یہ تانیث معنوی مؤثر ہوگی, یہ غیر انصراف کا سبب بنے گی؟ وجہ یہ کیونکہ آپ نے مذکر کا نام رکھ دیا ہے تو اب اس تانیث معنوی کے مؤثر ہونے کے لیے صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ تین حروف سے زائد پر مشتمل ہونا چاہیے تاکہ جو آخری حرف ہے وہ تاکہ قائم مقام بن جائے بھائی, تاکہ قائم مقام بن جائے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ قدمن جو مؤنث معنوی ہے کہ اگر کسی مذکر کا یہ نام رکھ دیا جائے تو پھر یہ تین حروف سے زائد نہیں ہے, لہذا یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا. اور جبکہ عقرب یہ مؤنث سماعی ہے, مؤنث معنوی ہے, اگر کسی مذکر کا نام عقرب رکھ دیا جائے تو یہ چونکہ تین حروف سے زائد ہے تو یہ تانیث معنوی مؤثر ہوگی اور غیر انصراف کا سبب بنے گی بھائی, اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو چوتھا یا پانچواں حرف جو آئے گا وہ تائے تانیث کے قائم مقام ہو جائے گا, تو گویا ابھی بھی تانیث حکمن موجود ہے بھائی, حکم لگا دیا جائے گا, گویا ابھی بھی تانیث موجود ہے بھائی, حکم لگا دیا جائے گا. آپ نے ضابطہ پڑھا ہے التصغیر یرد الاشیاء الى اصولها, چنانچہ قدم کی جب تصغیر دیکھی گئی تو وہ عربی زبان میں قدیمتن آتی ہے بھائی, تو معلوم ہوا یہاں پر قدمن کے اندر تا مقدر ہے جو تصغیر کے اندر ظاہر ہو گئی, اور یہ تا میم کے بعد آ رہی ہے اور قدمن میں تو میم کے بعد کوئی حرف نہیں تو لہذا کوئی حرف اس تا کے قائم مقام نہیں, جبکہ عقرب کی تصغیر جو ہے وہ عقیرب آتی ہے, وہاں تصغیر کے اندر بھی تائے تانیث موجود نہیں, معلوم ہوا یہاں جو چوتھا حرف ہے وہ خود ہی تائے تانیث کے قائم مقام ہے, اور جب یہ عقرب کسی کا نام رکھ دیا گیا تو یہ چوتھا حرف ابھی بھی موجود ہے تو گویا حکمن تانیث ابھی بھی موجود ہے, یعنی یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ تانیث موجود ہے, یعنی تا موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ہم نے معرفہ کے بارے میں پڑھا تھا بھائی, اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ معرفہ سے مراد تعریف ہے, یعنی معرفہ ہونا, معرفہ ہونا, इसलिए क्योंकि मारिफा और नकेरा ये तो इसम होते हैं और इसम तो जात है और ये असबाब मनासर्फ जितने हैं ये तो आराज और सिफात की कबील से हैं। तो मारिफा बोलकर क्या मुराद है? तारीफ। तारीफ का क्या मतलब? क्या तर्जमा करेंगे तारीफ का? मारिफा होना। क्या तर्जमा करेंगे? मारिफा होना। सवाल पैदा होता है कि जब तारीफ सबब है तो तारीफ ही को साहिब काफिया जिक्र कर देते, मारिफा को जिक्र करने की क्या जरूरत थी? तो मैं जवाब जिक्र कर चुका कि जब गैर इंसिराफ की बहस शुरू हुई थी तो वहां साहिब काफिया ने शेर की सूरत में तमाम असबाब मनासर्फ को इकट्ठा जिक्र किया था और वहां मारिफा का लफ्ज जिक्र था, क्योंकि तारीफ को जिक्र किया जाता तो शेर का वजन दुरुस्त न रहता, तो वहां चूंकि मारिफा का लफ्ज जिक्र था इसलिए तफसील बयान करते वक्त भी मारिफा ही का लफ्ज जिक्र कर दिया भाई। तो मारिफा बोलकर क्या मुराद है? तारीफ भाई। और फिर इसकी शर्त जिक्र की थी कि ये मारिफा या तारीफ जो है गैर इंसिराफ का सबब बनेगी। इसके लिए शर्त क्या है? कहते हैं शर्तुहा अंतकून अलमीयतन, आलम होना चाहिए। वो तारीफ क्या हो? अलम हो। इस पर इश्काल होता है कि अलमीयतन, अलमीयतन इसमें या मस्दर वाली है और अलमियत का क्या माना? आलम होना, यानी किसी शय का आलम होना। कौनु शय आलमन, एक शय का आलम होना। और यहां किसकी बात की जा रही है? तारीफ की। तो कौनुहा आलमन, तारीफ का आलम होना। भाई तारीफ तो वसफ है और आलम तो जात है। देखो जैद, अमर, बकर ये सब क्या हैं? आलम हैं। और आलम मालूम हुआ इसम होता है और इसम तो जात है, और तारीफ यानी मारिफा होना या नकेरा होना ये तो इसम की सिफत होती है। तो कौनुहा आलमन, तारीफ का आलम होना। तो देखो तो आलम का हमल हो रहा है तारीफ पर। कौनुहा आलमन, कौनुहा आलम, तारीफ का आलम होना। तो आलम का हमल हो रहा है तारीफ पर। तारीफ है वसफ और आलम है जात, तो जात का हमल वसफ पर सही नहीं। जिस तरह वसफ का हमल जात पर सही नहीं, इसी तरह जात का हमल भी वसफ पर सही नहीं है। तो एक तो ये एतराज यहां होता है। दूसरा एतराज ये कि अंतकून आलमीयतन, तो आलमीयतन किस माना में हुआ? कौनुहा आलमन। और अंतकूना के अंदर हिया जमीर है, वो भी उस मारिफा को राजे, और मारिफा से क्या मुराद? तारीफ। तो अंतकूना भी किस माना में हुआ? कौनुहा। तो इबारत गोया यूं बन गई, शर्तुहा कौनुहा कौनुहा आलमन। तो दो दफा कौन आ रहा है, तो यह इबारत दुरुस्त नहीं रहती भाई। तो एक तो यह एतराज के तकरार आ रहा है कौन का, और दूसरा यह कि जात का हमल हो रहा है वसफ पर। तो साहिब जामी ने उसकी अजीब तकरीर की कि सारा इश्काल खत्म हो गया। उन्होंने अलमियत का तर्जमा हाजन नौ के साथ कर दिया। अलमियत का तर्जमा किसके साथ कर दिया? हाजन नौ। भाई देखो, तारीफ एक जिन्स है, मारिफा होना जिन्स है। मारिफा होना, देखो मैं मस्तर जिक्र कर रहा हूं, और मारिफा होने की कई सूरतें हैं। एक सूरत आलम होना, एक सूरत इसमें इशारा होना। देखो मैं मस्तरी तर्जमे करता जा रहा हूं, आलम होना, इसमें इशारा होना, इसमें मौसूल होना, मुआरफ बिल्लाम होना। देखो तो ये तारीफ जिन्स है और तारीफ की कई अनवा हैं। उन अनवा में से एक नौ क्या है? अलमियत भी है। उनमें से एक नौ अलमियत भी है। तो अलमियत का तर्जमा किसके साथ कर दिया? हाजन नौ के साथ, कि ये हाजन नौ की तावील में है भाई, हाजन नौ की। तो इबारत गोया यूं बन गई, शर्तुहा अंतकून हाजन नौ, कि मारिफा की शर्त यह है कि मारिफा यानी तारीफ जो है वो इस नौ वाली होनी चाहिए। तारीफ ये नौ होनी चाहिए, यानी अलमियत वाली होनी चाहिए, इसमें इशारा या इसमें मौसूल वगैरह वाली नहीं होनी चाहिए भाई। तो अब इबारत हल हो गई भाई, बात समझ में आ गई। और दूसरी तकरीर ये कि अंतकून अलमियतन, कि इसके अंदर अगर या निस्बत वाली मान ली जाए फिर तो कोई इश्काल ही नहीं होता। जैसे लाहौरियन, क्या माना? लाहौर वाला। और मुअन्नस हो तो क्या कहेंगे? लाहौरियतुन, लाहौर वाली। यहां पर भी है अंतकूना अलमियतन, कि वो तारीफ जो है अलमियत वाली होनी चाहिए, तारीफ जो है अलमियत वाली होनी चाहिए। तो लिहाजा फिर तो इश्काल ही कोई नहीं भाई। और मैंने आपको बतलाया था कि यहां एक तरकीब यह भी है कि अंतकून अलमियतुन आप पढ़ें भाई, अलमियतुन पर रफा पढ़ें, इसको काना की खबर ना बनाएं बल्कि इस तकूनों को तामा बना लें। मैंने बताया था एक काना नाकिसा है एक काना तामा। काना नाकिसा वो है जो एक इसम चाहता है और एक खबर, उसके बगैर बात पूरी नहीं होती। जबकि काना तामा जो है वो सबता के माना में होता है और वो सिर्फ फाइल पर बात पूरी हो जाती है। जैसे काना मतरुन, बारिश हुई थी, बारिश हुई थी, यहां किसी खबर की जरूरत नहीं। तो लिहाजा यहां काना को तामा बना लें और अलमियतुन को उसका फाइल बना लें। तो इबारत यूं हो गई, शर्तुहा अंतकूना अलमियतुन। और शर्त जो है अंतकूना, अंतकूना किस माना में हुआ? कौन के माना में। और अलमियतुन किस माना में है? हाजा नौ के माना में। तो कौन की इजाफत कर दें फाइल की तरफ, शर्तुहा कौनु हाजा नौ। तो ये तकरीर जो है साहिब जामी की तकरीर के ज्यादा मुआफिक है क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह आगे तर्जमा किया है। ऐ कौनु हाजा नौ, शर्तुहा कौन, शर्त जो है मारिफा की इस नौ का होना है जिनसे तारीफ की और अनवा में से, जिनसे तारीफ की और अनवा में से इस नौ का होना यह शर्त है भाई। इबारत समझ में आ गई। फिर सवाल पैदा हुआ कि तारीफ की तो बहुत सी अनवा हैं तो उनमें से सिर्फ अलमियत क्यों मुआतबर है, सिर्फ अलमियत की शर्त क्यों लगाई है। तो उसका जवाब भी हो गया था कि भाई बाकी अनवा तो गैर इंसिराफ के मुनाफी हैं भाई। बाज तो वो हैं जो लफ्ज को मबनी बना देती हैं, जैसे तारीफ बिज जमायर, इसी तरह मुबहमात हैं। मैंने बताया था मुबहमात इल्म नहव के अंदर अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला को मुबहमात कहते हैं क्योंकि इनके माना का पता नहीं चलता जब तक इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह का पता ना चल जाए और जब तक इसमें मौसूल के बाद सिला जिक्र ना हो जाए इनका माना समझ में नहीं आता, इसलिए इनको मुबहमात कहते हैं। तो कहते हैं जो तारीफ मुजमरात के जरिए है या वो तारीफ जो मुबहमात के जरिए है वो तो लफ्ज को मबनी बना देती है और गैर इंसिराफ ये तो मौरब की किस्म है। तो ये तो फिर हमारी बहस से ही खारिज हो जाते हैं ये जो तारीफ बिल मुजमरात और तारीफ बिल मुबहमात है। और बाकी जो तारीफ बिल लाम या बिल इजाफत है भाई, अलिफ लाम और इजाफत ये तो गैर इंसिराफ के मुनाफी हैं। गैर मुनसरिफ पर भी अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए या उसकी इजाफत हो जाए तो उस पर कसरा आ जाता है। तो बास कहते हैं कि इस वक्त यह है तो गैर मुनसरिफ, अलबत्ता मुनसरिफ के हुक्म में हो गया है, जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि मुनसरिफ के हुक्म में नहीं हुआ बल्कि यह बाकायदा मुनसरिफ ही बन गया है इस वक्त। तो देखो अलिफ लाम और इजाफत ये तो गैर इंसिराफ के मुनाफी हैं भाई, ये तो गैर मुनसरिफ को भी क्या बना देते हैं? मुनसरिफ बना देते हैं। तो तारीफ की सिर्फ एक ही नौ बच गई थी और वो अलमियत है, इसीलिए उसकी शर्त लगा दी कि तारीफ कौन सी होनी चाहिए? अलम वाली होनी चाहिए। उसके बाद फिर यह जिक्र किया था कि भाई अलमियत को बराह रास्त सबब बना देते, जब मारिफा में से सिर्फ अलमियत मुराद है बाकी असबाब तारीफ मुराद ही नहीं है तो सीधा सीधा कह देते वल अलमियत, असबाब मना सर्फ में से एक अलमियत है। तो उसका जवाब भी गुजर गया कि भाई ये जितने असबाब मना सर्फ हैं इनमें फरइयत वाला वसफ है, ये सब फरा है किसी न किसी चीज की। तो ये जो मारिफा है ये फरा है नकिरा की, ये फरा है। तो तारीफ के अंदर भी फरइयत है, फरइयत वाला वसफ मौजूद है किसके मुकाबले में? तनकीर के मुकाबले में। अगर अलमियत कह दिया जाता तो अलमियत का फरा होना तनकीर के मुकाबले में इतना वाजह नहीं था। मसलन मैं आपसे पूछता हूं भाई नकिरा, नकिरा के मुकाबले में क्या आता है? मारिफा। आप फौरन कहेंगे मारिफा, आप अलम नहीं कहेंगे। आप अलम नहीं कहेंगे। मालूम हुआ नकेरा के मुकाबले में मारिफा आता है, अलम नहीं आता। अलम है तो उसके मुकाबले में, लेकिन उसका उसके मुकाबले में होना या उसकी फरा होना इतना जाहिर नहीं है जितना किसके मुकाबले में, नकेरा। नकेरा के मुकाबले में अलम का फरा होना या उसके मुकाबले में होना इतना वाजह नहीं जितना मारिफा है भाई। तो तनकीर के मुकाबले में फौरन तारीफ जहन में आती है, जहन उसकी तरफ जाता है। तो तारीफ का फरा होना तनकीर के लिए ये वाजह है बमुकाबला आलमियत के भाई। आगे सबक देखिए भाई। अल उजमत वही कौन लफ्ज मिम्मा वज़अहू गैरुल अरब। आज हम असबाब मना सर्फ में से उजमा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। उजमा भाई, उजमा की तफसीर कर रहे हैं साहिब जामी भाई। कहते हैं वही कौन लफ्ज मिम्मा वज़अहू गैरुल अरबी। ये लफ्ज का होना है मिम्मा, ये मिम्मा असल में क्या था, मिन मा, तो ये मा से मुराद अल्फाज हैं भाई। वही कौन लफ्जी, ये लफ्ज का होना मिम्मा उन अल्फाज में से, वज़अहू गैरुल अरबी जिनको गैर अरब ने वजा किया हो। एक वो लफ्ज जिसको अरब ने वजा किया वो तो है अरबी भाई, और जिसको गैर अरब ने वजा किया वो क्या है, आजमी लफ्ज होगा भाई, उजमा होगा उसमें। तो साहिब जामी ने उजमा की तफसीर की वही कौन लफ्जी। वजह दरअसल ये कि उजमा जो है अरबी जुबान में, उजमा का माना होता है जुबान में लुकनत होना। आपने देखा होगा बाज लोग जो हैं बोलते हुए उनकी जुबान अटकती है भाई, बाज की कुछ थोड़ी अटकती है, बाज की तो बहुत ज्यादा जुबान अटकती है। एक एक लफ्ज अदा करना उनके लिए बाज औकात मुश्किल हो जाता है, बार बार अदा करते हैं और जुबान अटक जाती है। तो इसको कहते हैं लुकनत भाई। तो ये जो जुबान में लुकनत है इसको उजमा कहते हैं, जुबान में लुकनत का होना। तो इसी तरह उजमा का माना है कलाम में इबहाम होना। कोई शख्स बात करे और उसकी बात वाजह ना हो, पूरी तरह आपको समझ में ना आए, तो आप कहेंगे कि इसके कलाम में उजमा है, यानी इबहाम है भाई। तो उजमा का माना क्या हुआ, जुबान में लुकनत होना और कलाम में इबहाम होना। और यहां असबाब मनासर्फ के अंदर उजमा जिक्र हुआ तो सवाल पैदा होता है कि भाई जुबान के अंदर लुकनत होना या कलाम का मुबहम होना, यह कैसे सबब बनेगा गैर इंसिराफ का। तो साहिब जामी बतला रहे हैं कि नहीं भाई, यहां उजमा का वो माना मुराद नहीं जो आप समझ रहे हैं कि जुबान में लुकनत होना या कलाम का मुबहम होना, बल्कि यहां उजमा का माना है कि लफ्ज का गैर अरबी होना, यानी वो लफ्ज के उसको गैर अरब ने वजा किया हो, यानी आजमी लफ्ज हो। तो उजमा का यहां माना लफ्ज का गैर अरबी होना भाई। तो कहते हैं अल उजमतु वही कौन लफ्ज मिम्मा वज़अहू गैरुल अरबी, ये लफ्ज का होना उन अल्फाज में से जिसको गैर अरब ने वजा किया हो। और कौन लफ्ज के साथ तफसीर की उजमा की, इसलिए क्योंकि असबाब मनासर्फ जितने आपने पढ़े हैं सब औसाफ की कबील से हैं, ये सब लफ्ज की सिफत बनते हैं, ये सब लफ्ज की कलिमा की सिफत बनते हैं। देखो कलिमा वो मारिफा होगा या नकेरा, तो मारिफा होना या नकेरा होना उसकी सिफत है। कलिमा अलम होगा या अलम नहीं, तो अलम होना या न होना ये कलिमा की सिफत होगा। इसी तरह कलिमा जो है उसके अंदर अदल होगा या नहीं, यानी मादूल होना कलिमा की सिफत होगा या सिफत नहीं। इसी तरह वसफ होना, कलिमा जो है वो वसफ होने के साथ मौसूफ होगा या मौसूफ नहीं। तो ये सारे जितने असबाब मनासर्फ हैं ये औसाफ की कबील से हैं, इसीलिए साहिब जामी ने भी उजमा का तर्जमा वही कौन लफ्ज के साथ किया, किसके साथ, लफ्ज का होना मिम्मा वज़अहू गैरुल अरबी उन अल्फाज में से जिसको गैर अरब ने वजा किया हो। और मैंने बताया था कौन लफ्ज ये जो है ये हासिल बिल मस्तर का तर्जमा इस तरह किया जाता है, किसका, एक होता है मस्तर एक है हासिल बिल मस्तर भाई। मस्तर एक माना का नाम है जिसका खारिज में अलग वजूद नहीं, हमें खारिज में मस्तर दिखाई नहीं देता, हां मस्तर से जो कैफियत और जो सूरत हासिल होती है वो हमें दिखाई देती है, यानी मस्तर का असर हमें खारिज में दिखाई देता है। तो जब एक लफ्ज को अजम ने वजा किया हो, उन्होंने उसको वजा किया है, तो उस कलिमा की सिफत क्या बन गई? उजमा बन गई, यानी गैर अरब का वजा किया हुआ होना यह उसकी सिफत बन गई। तो यह हासिल बिल मस्तर है भाई। तो कहते हैं वही कौनुल लफ्ज मिम्मा वजाहू गैरुल अरबी, यह लफ्ज का होना है उन अल्फाज में से जिसको गैर अरब ने वजा किया हो। वलिता सीरिहा फी मन सर्फी शर्तान, और इसके मुअस्सिर होने के लिए मन सर्फ के अंदर शर्तान, दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं भाई। भाई पहले मतन देख लें भाई, मतन देख लें। कहते हैं अल उजमतु शर्तुहा अंतकून अलमियतन फिल अजमियति व तहर्रुकुल औसति अवि ज़ियादतु अल सलासति फनूहुन मुनसरिफुन व शतर व इब्राहीम मुमतनिउन। उजमा भाई, उजमा की उजमा सबब बनता है गैर इंसिराफ का। इसकी शर्त क्या है? साहिब काफिया फरमाते हैं शर्तुहा अंतकून अलमियतन, इसकी शर्त यह है कि वो अलम होना चाहिए। वो लफ्ज क्या होना चाहिए? अलम होना चाहिए। फिल अजमियति ऐ फिल लुगतिल अजमियति, अजमी जुबान के अंदर भी अलम होना चाहिए। वजह यह है कि किसी भी जुबान वाले के लिए दूसरी जुबान सकील होती है, तो जब अरबी जुबान वाले गैर अरबी लफ्ज को अपनी जुबान में लाएंगे तो उनके लिए उसकी अदायगी दुश्वार होती है, सकील होती है। तो फिर उस जुबान वाले उस लफ्ज में तब्दीली करके उसको अपनी जुबान के मुताबिक ढाल लेते हैं, जिसकी वजह से उस कलिमे में सिकल कम हो जाता है, उसकी जुबान पर अदायगी आसान हो जाती है। तवज्जो है, किसी भी जुबान वाले जब किसी कलिमे को अपनी जुबान में लेकर आते हैं किसी दूसरी जुबान से, तो फिर उसके अंदर वो तब्दीली कर देते हैं ताकि उनके लिए उस लफ्ज की अदायगी जुबान पर आसान हो। जैसे देखो भाई, डॉक्टर, डॉक्टर के लफ्ज को अरबी जुबान में मुंतकिल किया गया और अरबों ने उसको अपनी जुबान के मुताबिक ढाल लिया। अब डॉक्टर को वो दुक्तूर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? दुक्तूर भाई। देखा, डॉक्टर का लफ्ज उनके लिए सकील था तो उन्होंने लफ्ज को अपनी जुबान के मुताबिक तब्दील कर लिया। इसी तरह टेलीविजन भाई, टेलीविजन का लफ्ज अरबी जुबान की तरफ मुंतकिल किया गया लेकिन यह लफ्ज अरबों के लिए सकील था, उन्होंने उसको बदल लिया टेलीफिज्यून। अब वो क्या बोलते हैं? टेलीफिज्यून। अब देखो ये उनके लिए आसान है, अपनी जुबान के मुताबिक उन्होंने लफ्ज में तब्दीली कर ली। इसी तरह भाई फारसी में लगाम का लफ्ज है, लगाम, घोड़े को जो पहनाई जाती है लगाम, उसको अरबी की तरफ मुंतकिल किया गया तो अरबों ने उसके अंदर तब्दीली कर दी और गाफ को जीम से बदल दिया, तो उसको अब वो लिजाम पढ़ते हैं भाई। लगाम का लफ्ज फारसी से मुंतकिल किया गया किसकी तरफ? अरबी की तरफ। तो देखो उसमें भी अरबों ने तब्दीली कर दी और क्या पढ़ते हैं? लिजाम पढ़ते हैं भाई। तो देखो कोई भी जुबान वाले जब किसी लफ्ज को अपनी जुबान की तरफ मुंतकिल करते हैं तो उसमें ऐसी तब्दीली कर देते हैं कि उनके लिए उस लफ्ज की अदायगी आसान हो जाती है। इसीलिए उजमा जो है इसके अंदर शर्त लगाई गई है, गैर इंसिराफ का सबब बनेगा लेकिन शर्त यह है कि यह अजमी जुबान में आलम होना चाहिए। वजह यह कि आलम के अंदर जो है तब्दीली नहीं की जाती, उसको उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह एक जुबान में था उसी तरह दूसरी जुबान में भी इस्तेमाल होगा। जैसे इब्राहिम भाई, इब्राहिम अब आजमी नाम है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस जमाने में अभी अरबी जुबान बनी ही नहीं थी भाई, तो ये आजमी नाम है भाई। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता अरबी जुबान बनना शुरू हुई और होते होते हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में अरबी की फसाहत और बलागत अपने उरूज पर पहुंच गई, यहां तक कि अरब अपने अलावा बाकी तमाम दुनिया को अजम कहने लगे। यानी उन्हें अपनी जुबान पर इतना फखर और तकब्बुर था कि जुबान है तो हमारी जुबान है, बाकी दुनिया को वो अजम कहते थे। अजम का माना है गूंगे भाई, यानी बाकी दुनिया वालों की जुबान हमारे सामने इसी तरह है जैसे वो गूंगे हों भाई, यानी उनकी जुबान हमारी जुबान के सामने ला जुबान है भाई। तो इब्राहिम जो है ये देखो एक आजमी नाम है और इसको नकल किया गया अरबी जुबान की तरफ और अलम में कोई तब्दीली नहीं की जाती तो ये अरबी जुबान में भी उसी तरह है और चूंकि आजमी नाम है इसलिए अरबों के लिए इसकी अदायगी सकील होगी। भाई अदायगी क्या होगी? सकील होगी। इसी वजह से ये गैर मुनसरिफ जो है इस पर कसरा और तनवीन नहीं आते क्योंकि इसकी अदायगी जुबान पर सकील होती है। कलिमे में दो सबब आ चुके, कलिमे में दो सबब आ गए, हर सबब की वजह से कलिमे में सिकल पैदा होता है। एक सिकल आए तो वो इतना ज्यादा नहीं, एक सबब आए, लेकिन जब दो सबब आ गए तो सिकल ज्यादा हो गया कलिमे में। अब उस पर कसरा और तनवीन नहीं पड़ते क्योंकि कसरा और ज्यादा सिकल पैदा कर देगा। पहले ही दो सिकल हैं, अब तीसरा सिकल आ जाएगा, तनवीन भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि तनवीन तो एक नूने साकिन का नाम है, यानी एक हर्फ बढ़ जाएगा और जितने हरूफ बढ़ते जाएं कलिमे की जुबान पर अदायगी दुश्वार होती चली जाती है। तो लिहाजा जब कलिमे में दो असबाब आ जाएं तो दो सिकल आ चुके, अब उसके बाद उस पर कसरा और तनवीन नहीं पड़ते, वरना तो फिर तीसरा सिकल भी उसके अंदर आ जाएगा और जुबान पर अदायगी बहुत दुश्वार हो जाएगी। तो लिहाजा उजमा के अंदर शर्त यह है कि वह आजमी जुबान के अंदर अलम होना चाहिए, चुनांचे जब अरब उसको अपनी जुबान की तरफ नकल करेंगे तो फिर अलम में कोई तब्दीली नहीं की जाती, वो उसी तरह रहेगा और अरबों की जुबान पर उसकी अदायगी दुश्वार होगी, कलिमे में सिकल पैदा होगा और वो गैर इंसिराफ का सबब बनेगा। तो कहते हैं उजमा जो है शर्तुहा अंतकूना अलमियतन फिल अजमियती, उजमा जो है इसकी शर्त यह है कि वो उजमा अलम वाला होना चाहिए अजमी जुबान में, एक शर्त तो यह है। दूसरी शर्त याद रखो उजमा के लिए, दूसरी शर्त यह है कि वो तीन हरूफ से जायद होना चाहिए वो कलिमा, या अगर तीन हरूफ पर मुश्तमिल है तो दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक होना चाहिए। तीन हरूफ से जायद होगा तो देखो कलिमे में सिकल आएगा, या अगर तीन पर मुश्तमिल है तो दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक होना चाहिए, क्योंकि एक वो कलिमा है जिसके दरमियान वाला हर्फ साकिन है और एक वो कलिमा है जिसके दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक है। जाहिर सी बात है जिसका दरमियान मुतहर्रिक है उसकी अदायगी जुबान पर सकील होगी। जैसे जरबुन और जाराबुन, देखो जाराबुन की अदायगी जुबान पर सकील है भाई। तो उजमा के लिए दो शर्तें जिक्र कर दी उन्होंने, पहली शर्त क्या कि वो अजमी जुबान में अलम होना चाहिए ताकि जब अरबी की तरह मुंतकिल किया जाए तो इसमें कोई तब्दीली न की जाए। दूसरी शर्त ये कि दो चीजों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए भाई, या तो दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक हो या कलिमा तीन हरूफ से जायद पर मुश्तमिल होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो उजमा मुअस्सिर होगा और गैर इंसिराफ का सबब बनेगा। तो ये माना देखिए भाई, मतन कहते हैं शर्तुहा अंतकूना अलमियतन फिल अजमियति, उजमा की शर्त यह है कि वो उजमा अलम वाला होना चाहिए अजमी जुबान में। व तहर्रुकुल औसती अविज ज़ियादतु अला सलासती, और दरमियान वाले हर्फ का मुतहर्रिक होना, अविज ज़ियादतु अला सलासती या तीन हरूफ से ज्यादा होना, तीन हरूफ पर ज्यादा होना, यह दूसरी शर्त आ गई। फनूहुन मुनसरिफुन, तो नूह का लफ्ज मुनसरिफ है भाई। नूह अलैहिस्सलाम ये तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी पहले गुजरे हैं और मैंने बताया अरबी जुबान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद बनना शुरू हुई भाई। तो नूह अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी पहले गुजरे हैं और ये अजमी नाम है। तो इसके अंदर पहली शर्त तो पूरी है, अलम तो है, अजमी जुबान में भी क्या है अलम, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं कि तीन हरूफ से ज्यादा पर मुश्तमिल होना चाहिए या दरमियान वाला मुतहर्रिक होना चाहिए। नूह जो है ना तो तीन हरूफ से जायद पर मुश्तमिल है ना इसके दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक है, बल्कि वो तो साकिन है वाउ बई। तो लिहाजा फनूहुन मुनसरिफुन, तो नूह का लफ्ज मुनसरिफ है भाई। आगे देखिए भाई, व शतरु व इब्राहिम मुमतनिउन, और शतर और इब्राहिम जो है मुमतनिअ हैं, यानी इनकी सर्फ मुमतनिअ है भाई। देखो शतर और इब्राहिम ये दोनों अलम हैं भाई, अलम, इनमें एक सबब उजमा है और उजमा के लिए शर्त क्या थी, अलम होना चाहिए, अलम वाली शर्त भी दोनों में पूरी है। शतर ये भी एक किले का नाम है और इब्राहिम ये भी अलम है, और नीज दूसरी शर्त भी इनके अंदर पूरी है, शतर तीन हरूफ पर मुश्तमिल है लेकिन दरमियान वाला मुतहर्रिक है, और इब्राहिम जो है तीन से ज्यादा हरूफ पर मुश्तमिल है। तो ये दोनों लफ्ज गैर मुनसरिफ हैं भाई, ना इन पर कसरा आएगा और ना तनवीन आएगी भाई। अब आइए भाई शरा के साथ इसको हल करें। अल उजमतु वहिय कौनुल लफ्ज मिम्मा वज़अहु गैरुल अरबी वलितासीरिहा फी मनअ सर्फ शर्तानी, और उजमा के मुअस्सिर होने के लिए फी मनअ सर्फ, मने सर्फ के अंदर शर्तानी दो शर्तें हैं भाई। इबारत पर नजर है, देखिए भाई इबारत जरा मतन मतन देख लें। अल उजमतु यह है मुब्तदाए अव्वल, और आगे शर्तुहा अन तकून अलमियतन फिल अजमियति व तहर्रुकुल औसती अवि ज्यादतु अल सलासती। यह पूरा जुमला खबर है उजमा की, यह पूरा जुमला खबर है उजमा की। तो उजमा हुआ मुब्तदाए अव्वल और आगे यह पूरा जुमला उसकी खबर, और यह जो जुमला है यह फिर जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया के अंदर एक मुब्तदा आता है और एक खबर, तो लिहाजा यह जो शर्तुहा है यह फिर है मुब्तदा, तो यह मुब्तदाए सानी हुआ। तवज्जो है, उजमा क्या है मुब्तदाए अव्वल और उसकी खबर पूरा जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया के अंदर क्या होते हैं मुब्तदा और खबर, तो शर्तुहा जो है यह है मुब्तदाए सानी, और अंतकूना आलमियतन ये आखिर तक ये सारी इसकी खबर है। फिर इस खबर में जरा गौर करें, अंतकूना आलमियतन फिल अजमियती यह है मातूफुन अलै, और आगे व तहर्रुकुल औसती अवि ज्यादतु अल सलासती ये है मातूफ भाई। दो शर्तें हैं ना, पहली शर्त क्या अंतकूना अलमियतन फिल अजमियती कि वो उजमा अलम वाला होना चाहिए अजमी जुबान में, ये है मातूफुन अलै, और दूसरी शर्त क्या दो चीजों में से एक होनी चाहिए तहर्रुकुल औसती अवि ज्यादतु अल सलासती। तवज्जो है, अंतकूना अलमियतन फिल अजमियती यह है मातूफ अलै भाई, और आगे जितना आ रहा है व तहर्रुकुल औसती अवि ज्यादतु अल सलासती ये उस पर मातूफ है भाई। तो ये मातूफुन अलै और मातूफ मिलकर ये खबर बनेंगे शर्तुहा की। इबारत समझ में आ रही है, ये खबर बनेंगे किसकी शर्तुहा की, और फिर ये शर्तुहा अपनी खबर से मिलकर ये खबर बनेगा उजमा के लिए। तो शर्तुहा की खबर में दो चीजें हैं, मातूफुन अलै भी है और मातूफ भी है। तो साहिब जामी ने जो पीछे कहा ना वली तासीरिहा फी मन सर्फी शर्तानी, और उजमा के मुअस्सिर होने के लिए मन सर्फ के अंदर शर्तानी दो शर्तें हैं भाई। साहिब काफिया ने तो दो शर्तें नहीं कहा, उन्होंने तो सिर्फ कहा शर्तुहा, उजमा की शर्त यह है, लेकिन आगे इसकी खबर जो है उसमें एक मातूफुन अलै जिक्र किया और एक मातूफ। मालूम हुआ दर हकीकत ये दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। और मालूम हुआ कि यहां हमल मुकद्दम है अतफ पर, फिर ही दो शर्तें बनेंगी। मैंने आपको बतलाया था कि कभी कभार हमल मुकद्दम होता है और कभी आतफ मुकद्दम होता है। अल कलिमतु इस्मुं व फिअलुं व हर्फुन, यहां देखो इस्म फेल और हर्फ इनके दरमियान वाव आया, और वाव आता है जमईयत के लिए, जमा करने के लिए, यह अतफ का फायदा देता है, जमईयत का फायदा देता है। मालूम हुआ इस्म के साथ फेल और हर्फ ये दोनों जमा हो जाएंगे तो फिर उसको कलिमा कहेंगे। अल कलिमा तो इस्मों व फेलों व हर्फुन, मालूम हुआ इस्म फेल और हर्फ ये जमा होंगे, एक ही लफ्ज इस्म भी होगा फेल भी होगा हर्फ भी होगा, तो फिर उसको अल कलिमा कहेंगे। तो उसका जवाब मैंने बतलाया था कि भाई यहां पर हमल मुकद्दम है, यानी अल कलिमा तो इस्मुन, देखो पहले हमल कर दिया, इसम को जोड़ दिया अल कलिमा से, कलिमा इसम है, फिर उसके बाद व फेलुन, अब फेल को जोड़ा कलिमा फेल है, फिर हर्फ को जोड़ा कलिमा हर्फ है, तो यहां पर देखो हमल मुकद्दम है, हमल मुकद्दम है आतफ पर। अगर अतफ मुकदम करेंगे तीनों को पहले जोड़ेंगे फिर हमल करेंगे फिर तो खराबी लाजिम आएगी भाई, बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी इसी तरह है, शर्तुहा जो है यह है मुबतदाए सानी और आगे इसकी खबर जो है वो मातूफुन अलै और मातूफ से मिलकर बन रही है। तो यहां पर बतलाना यह चाहते हैं कि हमल मुकदम है अतफ पर, पहले अंतकून आलमीयतन फिल आजमीयती, इसका हमल कर दो शर्तुहा पर। एक शर्त क्या है कि वो आलम होना चाहिए आजमी जुबान में, और उसके बाद व तहरुकुल औसती अवि ज्यादत अलसलासती, इसका हमल कर दो किस पर, शर्तुहा पर। तो जब हमल मुकदम है, जब हमल मुकदम है तो मालूम हुआ फिर ये एक शर्त नहीं है, कितनी शर्तें हैं, दो शर्तें हैं भाई। तो इसी की तरफ इशारा किया साहिब जामी ने, वली तासीरिहा फी मन सर्फ शर्तानी, के उजमा के मन सर्फ में मुअसर होने के लिए दो शर्तें हैं। आगे देखिए कहते हैं शर्तु हल अव्वलु, पहली शर्त यह है अंतकून आलमीयतन। देखा अशर्तुहा के बाद साहिब जामी ने अल अव्वल का लफ्ज निकालकर बतला दिया कि यहां यहां हमल मुकदम है आतफ पर, और देखने में यह एक शर्त है लेकिन हकीकत में कितनी शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। अशर्तु हल अव्वल यह पहली शर्त है, कौन सी, अंतकून आलमीयतन, कि वो उजमा आलम वाला होना चाहिए। आई मनसूबतन इलल आलमी, देखो ये फिर वैसी ही इबारत आ गई जैसे मारिफा के अंदर आई थी कि अल मारिफतु शर्तुहा अंतकून आलमीयतन। मारिफा की शर्त क्या है कि वो तारीफ आलम वाली होनी चाहिए, और वहां साहिब जामी ने दो तकरीरें की थी। एक तकरीर क्या की थी कि आलमियत के अंदर ये या मस्तर वाली बना लो, कौन सी बना लो, मस्दर वाली, और फिर इसको हाजन नौ की तावील में कर लो, ये वाली नौ, क्योंकि तारीफ की कई अनवा हैं, तारीफ यानी मारिफा होना। देखो मस्दर वाला तर्जमा कर रहा हूं, एक सूरत क्या है, एक नौ इसकी क्या, अलम होना, दूसरी नौ क्या, इसमें इशारा होना, तीसरी जमीर होना, इसमें मौसूल होना, मुअर्रफ बिल्लाम होना वगैरह। तो ये अनवा हो गई तारीफ की। तो आलमियत के अंदर या कौन सी बनाई थी, मस्दर वाली बनाई थी, और दूसरी तकरीर क्या की थी कि आलमियत के अंदर या निस्बत वाली बना लो, निस्बत वाली बना दो, यानी वो जो आलम की तरफ मंसूब हो। दो तकरीरें की थी, जहन में बात आ गई। यहां पर सिर्फ वो ये कह रहे हैं अंतकूना आलमीयतन ऐ मंसूबतन इलल आलमी, यानी आलम की तरफ मंसूब हो भाई, आलम की तरफ मंसूब हो। तो मालूम हुआ ये जो आलमियत के अंदर यहां या आई है ये निस्बत वाली है, ये निस्बत वाली है, ये मस्दर वाली नहीं हो सकती। यहां 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 मस्दर वाली नहीं हो सकती या इसलिए क्योंकि वहां बात चल रही थी तारीफ की, और तारीफ एक जिंस थी और आलम होना उसकी एक नौ थी। तवज्जो है, मारिफा के अंदर बात किसकी चल रही थी, तारीफ की, और तारीफ की एक नौ क्या थी, एक किस्म क्या थी, आलम होना। आलम होना भी तारीफ की एक किस्म है, लेकिन यहां पर अंतकून आलमीयतन यहां पर यह तकरीर नहीं चल सकती, क्योंकि आलम होना उजमा की नौ नहीं है भाई, आलम होना उजमा की नौ नहीं है। उजमा को जिंस बनाए और उसकी एक अनवा मुख्तलिफ अनवा बना दें, वो तकरीर यहां नहीं चल सकती। नहीं, बात वाजे हुई मेरा ख्याल, फिर सुनो भाई, देखो भूल गए हो सारी तकरीर। भाई देखो तारीफ का क्या माना, मारिफा होना, मारिफा होने की कई सूरतें हैं। एक सूरत क्या कि आलम हो, एक सूरत क्या जमीर हो, एक सूरत क्या इसमें इशारा हो, एक सूरत क्या इसमें मौसूल हो, एक सूरत क्या है मुअर्रफ बिल्लाम हो, और एक सूरत है इजाफत वगैरह। ये सारी किसकी ये सारी किसकी किस्में हैं, मारिफा की, तारीफ की किस्में हैं। तवज्जो है, ये सारी तारीफ की किस्में हैं। तो वहां इबारत क्या आई थी, अंतकूना आलमीयतन, अंतकूना, और तकूना के अंदर हिया जमीर किसको राजे थी, मारिफा को, और मारिफा से क्या मुराद थी, तारीफ। तवज्जो है, आलम होना तारीफ की एक नौ, तो इसको किस तावील में कर लिया, हाजा नौ की तावील में, कि तारीफ जो है इस नौ वाली होनी चाहिए। लेकिन यहां यह तकरीर नहीं चल सकती, इसलिए क्योंकि यहां क्या इबारत आई, अंतकूना अलमियतन, अंतकूना के अंदर हिया जमीर किसको राजे, उजमा को, और अलमियतन में अगर या मस्तर वाली बनाए तो माना यह बन जाएगा कि आपने उजमा को बना दिया जिंस, और अलम होना उसकी एक नौ है, हालांकि अलम होना यह उजमा की नौ तो नहीं है, यह तो तारीफ की एक नौ है। किसी लफ्ज को मारिफा बनाना हो कितनी सूरतें, मारिफा की कितनी किस्में हैं, सात किस्में, देखा वो सारी मारिफा की अनवा हैं, लेकिन उजमा की अनवा में तो अलम जिक्र नहीं, अलम नहीं आता भाई, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं शर्तुहा अंतकूना अलमियतन ऐ मनसूबतन इलल अलमी, और उजमा की पहली शर्त यह है कि अंतकूना अलमियतन, के वो उजमा अलम वाला होना चाहिए, ऐ मनसूबतन इलल अलमी, यानी अलम की तरफ मनसूब होना चाहिए। फिल लुगतिल अजमियती, अजमी जुबान में, भाई भाई मतन में था फिल अजमियती, साहिब जामी ने दरमियान में अल लुगत का लफ्ज निकालकर बतला दिया कि ये अल अजमिया सिफत है और इसका मौसूफ अल लुगत यहां पर महजूफ है। तो उजमा की शर्त यह है कि वो अलम की तरफ मनसूब होना चाहिए, फिल लुगतिल अजमियती, अजमी जुबान में। तवज्जो है, उजमा मैंने क्या बतलाया, अलमियत की शर्त क्यों लगाई, क्योंकि हर जुबान वाले जब किसी लफ्ज को अपनी जुबान में लाते हैं तो उसमें तब्दीली कर देते हैं, तो अरब भी उसमें तब्दीली कर देंगे, जब तब्दीली कर देंगे तो लफ्ज में सिकल नहीं रहेगा, तो फिर वो गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनेगा। लिहाजा क्या शर्त है कि वो लफ्ज क्या होना चाहिए, आजमी जुबान में ही अलम होना चाहिए, ताकि जब इसको अरबी जुबान की तरफ नकल करें तो इसमें कोई तब्दीली न की जाए। भाई अच्छा, यहां याद रखिए बास काफिया के नुस्खों में है फिल अजमियती, और बास नुस्खों में है फिल उजमती। बास काफिया के नुस्खों में क्या है, अंतकूना अलमियतन फिल अजमियती, और बास काफिया के नुस्खों में यूं है अंतकूना अलमियतन फिल उजमती। याद रखो दोनों सूरतों में, आसान तरकीब याद रखो, ये फिल अजमिया हो या फिल उजमा हो, दोनों सूरतों में इसको सिफत बना दो अलमियतन की, और जब अल अजमिया हो तो उससे पहले अल लुगत का लफ्ज मौसूफ महजूफ निकालें, जैसे साहिब जामी ने किया, और अगर अल उजमा का लफ्ज आए यहां पर फिल उजमती, तो फिर उजमा से पहले वक्त का लफ्ज मुजाफ महजूफ निकाल लें, फिर मौसूफ ना निकालें बल्कि वक्त का लफ्ज। तो इबारत यूं बन जाएगी, शर्तुहा अंतकूना अलमियतन फी वक्तिल उजमती। देखिए भाई जरा मतन मतन की इबारत फिर देख लें, अल उजमतु शर्तुहा अंतकूना अलमियतन फिल अजमियती, तो बास काफिया के नुस्खों में है फिल अजमियती, और बास काफिया के नुस्खों में है फिल उजमती। फिल अजमियती पढ़ें या फिल उजमती पढ़ें, दोनों सूरतों में ये जो जार मजरूर है इसकी आसान तरकीब ये है कि इसको सिफत बना दें अलमियत के लिए भाई, और जार मजरूर बराह रास्त तो सिफत नहीं बनता, तो इसके लिए साबितातन दरमियान में निकाल लेंगे, मौसूफ अलमियतन वो मनसूब है तो साबितातन वो भी मनसूब निकालेंगे, और अलमियतन के साथ तानीस की ता जुड़ी हुई है तो साबितातन भी मुअन्नस निकालेंगे। तो इबारत कैसे बन गई, अंतकूना अलमियतन साबितातन फिल अजमियती या फिल उजमती, और अल अजमिया हो तो फिर उससे पहले मौसूफ क्या निकालना है, फिल लुगतिल अजमियती, और अगर अल उजमा हो तो फिर अल उजमा से पहले मुजाफ वक्त का लफ्ज मुजाफ महजूफ निकाल लें, ऐ फी वक्तिल उजमती। तवज्जो है, तो देखो तर्जमा कैसे होगा, हम पहले इसको अल अजमिया पढ़ते हैं, इबारत यूं बन गई, शर्तुहा अंतकूना अलमियतन साबितातन फिल लुगतिल अजमियती, उजमा की शर्त यह है कि वो उजमा जो है ऐसी अलमियत हो जो आजमी जुबान में साबित हो। वो ऐसी, देखो मौसूफ से पहले क्या ले आते हैं, ऐसा या ऐसी का लफ्ज ले आते हैं। तो उजमा की शर्त यह है अंतकूना अलमियतन साबिततन फिल लुगतिल अजमियती, कि उजमा की शर्त यह है कि वो उजमा जो है ऐसी अलमियत हो जो साबित हो अजमी जुबान में, यानी अजमी जुबान में ही वो अलम होना चाहिए, अजमी जुबान में ही वो अलम होना चाहिए। या दूसरी सूरत में जब ये नुस्खा क्या हो, फिल उजमती, फिल उजमती हो तो फिर वक्त का लफ्ज मुजाह महजूफ निकाल लेंगे, ऐफी वक्तिल उजमती, और इबारत फिर क्या बन गई, शर्तुहा अंतकूना अलमियतन साबिततन फी वक्तिल उजमती, फी वक्तिल उजमत, उजमा की शर्त यह है कि वह उजमा ऐसी अलमियत हो जो साबित हो उजमा के वक्त, जो साबित है वो उजमा के वक्त साबित हो, यानी आजमी जुबान में होते हुए ही साबित है, अरबी की तरह मुंतकिल होने से पहले ही भाई। तो ये अलमियतन साबिततन फी वक्तिल उजमती, कि उजमा की शर्त यह है कि वह उजमा ऐसी अलमियत हो साबिततन जो साबित हो, फी वक्तिल उजमती, किस वक्त, उजमा के वक्त में, यानी जब आजमी जुबान में यह लफ्ज वजा किया गया था तो उस वक्त ही अलमियत साबित थी भाई। बात समझ में आ गई, बिअंतकूना मुतहक्किकतन फी ज़िम्निल अलमी फिल अजमी हकीकतन। अब इधर देखिए हासिल कलाम ये, उजमा की पहली शर्त यह है कि वो लफ्ज आजमी जुबान में ही अलम होना चाहिए, आजमी जुबान में ही, फिर याद रखो आजमी जुबान में ही अलम होगा या तो हकीकतन या हुक्मन। दो सूरतें बताएंगे साहिब जामी आपको, कि जैसे इब्राहिम का लफ्ज ये आजमी जुबान में हकीकतन आलम था भाई, इसको फिर अरबी जुबान की तरफ मुंतकिल किया गया, और अलम में तो कोई तब्दीली नहीं की जाती, लिहाजा इसमें भी कोई तब्दीली नहीं की गई, तो एक आजमी लफ्ज है और उसमें कोई तब्दीली भी नहीं की गई, लिहाजा इसके अंदर सिकल है, जुबान पर इसकी अदायगी दुश्वार है भाई। और कभी कभार जो लफ्ज अरबी जुबान की तरफ मुंतकिल किया गया वो आजमी जुबान में अलम नहीं होता, आजमी जुबान में आलम नहीं होता, जैसे आपको बतलाएंगे कालून भाई, कालून ये आगे मतन आगे किताब के अंदर ही लफ्ज आ रहा है, कालून भाई ये रूमी जुबान का लफ्ज है, और कालून का माना है अच्छी चीज, कोई भी चीज अच्छी हो उसको कालून कहते, तो ये रूमी जुबान में जो है कालून हर अच्छी चीज को कहते थे, ये आलम नहीं है। लेकिन फिर इसको जब अरबी की तरफ मुंतकिल किया गया तो अरबी की तरफ मुंतकिल करते वक्त इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, जैसे आलम को मुंतकिल करते हुए कोई तब्दीली नहीं की जाती, इसी तरह लफ्ज कालून को मुंतकिल करते हुए भी कोई तब्दीली नहीं की गई। तो कालून का लफ्ज आजमी जुबान में हकीकतन आलम तो नहीं है, वहां तो ये इसमें जिंस था, हर अच्छी चीज के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता था, लेकिन जब अरबी की तरफ नकल किया गया तो कोई तब्दीली नहीं की गई, इसी तरह इसको बरकरार रखा गया जिस तरह अलम को बरकरार रखते हैं उसमें तब्दीली नहीं करते। तो गोया कालून का लफ्ज हकीकतन तो अजमी जुबान में अलम नहीं था, लेकिन हुक्मन गोया यह भी अलम ही था, हुक्मन यह अलम था, यानी जिस तरह अलम में कोई तब्दीली नहीं की जाती इसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं की गई। तो हकीकतन तो आलम नहीं, लेकिन हुक्मान आलम ही के दर्जे में है, यानी उस पर हुक्म लगा दिया गया आलम वाला ही। देखिए भाई अब किताब पर कहते हैं भी अंतकूना मुतहक्किकतन फी ज़िम्निल आलमी फिल आजमी हकीकतन। बात तस्वीरिया है, सूरत बतला रहे हैं, किस चीज की सूरत, कि वो लफ्ज जिसको अरबी जुबान की तरफ मुंतकिल किया जाए वो उजमा में यानी अजमी जुबान में ही अलम होना चाहिए, और फिर अजमी जुबान में ही अलम होना या तो हकीकतन होगा या हुक्मन होगा। हकीकतन की मिसाल जैसे इब्राहिम और हुक्मन की मिसाल जैसे कालून है भाई, कि ये इसमें भी बगैर तब्दीली के इसको अरबी जुबान की तरफ नकल किया गया जिस तरह अलम को नकल किया जाता है। तो कहते हैं भी अन यकूना मुतहक्किकतन, بائی صورت کے وہ عجمہ متحققتن ثابت ہو، فی ضمن العلم علم کے ضمن میں، فی العجمی عجمی زبان کے اندر، حقیقتن کا ابراہیم جیسے ابراہیم ہے کہ ابراہیم حقیقتن عجمی زبان کے اندر علم تھا، تو یہ جو عجمہ ہے یہ علم کے ضمن میں ابراہیم کے اندر ثابت ہو رہا ہے، کس کے ضمن میں؟ علم ہے یہ بھائی. تو کہتے ہیں بھی ان تکون متحققتن فی ضمن العلم فی العجم حقیقتن کا ابراہیم، بائی صورت کے وہ عجمہ جو ہے ثابت ہونا چاہیے علم کے ضمن میں، فی العجمی عجمی زبان کے اندر، حقیقتن کا ابراہیم جیسے ابراہیم ہے، او حکمن یا یہ عجمی زبان میں علم کے ضمن میں ثابت ہوگا، حکمن بھائی حقیقتن نہیں بلکہ حکمن بھائی، کس طرح حکمن کس طرح آگے صورت بتلا رہے ہیں، بِأَن يَنْقُلَهُ الْعَرَبُ مِنْ لُغَةِ الْعَجَمِ، بھائی صورت کے عرب اس کو نقل کریں عجمی زبان سے، إِلَى الْعَلَمِيَّةِ کس کی طرف؟ عالمیت کی طرف نقل کر دیں، من غیر تصرف فیہ قبل النقل بغیر کوئی تصرف کیے اس کے اندر نقل سے پہلے. تو قالون کا لفظ عجمی زبان میں اس میں جنس تھا، ہر اچھی چیز کو کہتے تھے، لیکن پھر عربی زبان میں اس کو کس کی طرف نقل کر لیا؟ علمیت کی طرف نقل کر لیا. تو عجمی زبان میں تو یہ علم نہیں تھا، لیکن عربی میں کس کی طرف نقل کیا گیا؟ علمیت کی طرف، اور بغیر کوئی تبدیلی کیے اسی طرح رکھا جیسے علم کو نقل کرتے ہوئے اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی. جی ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. او حکمن یا وہ حکمن علم ہوگا، بِأَن يَنْقُلَهُ الْعَرَبُ مِنْ لُغَةِ الْعَجَمِ إِلَى الْعَلَمِيَّةِ، بائیں صورت کے نقل کریں عرب اس کو عجمی زبان سے، إِلَى الْعَلَمِيَّةِ علم ہونے کی طرف، مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهِ قَبْلَ النَّقْلِ بغیر کوئی تصرف کیے اس کے اندر نقل کرنے سے پہلے، عربی زبان کی طرف منتقل کرنے سے پہلے اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں. کَقَالُونَ جیسے کہ قالون ہے بھائی، یاد رکھو قالون یہ امام قالون بھائی، امام قالون یہ قرات کے امام ہیں بھائی، قرات کے امام ہیں. اور قالون رومی زبان میں ہر اچھی چیز کو کہتے تھے، لیکن پھر امام قالون کو یہ نام دیا، یہ لقب دیا امام نافع یا امام مالک رحمہم اللہ نے بھائی، یہ لقب دیا چونکہ ان کی قرات بہت زبردست تھی، بہت اچھی تھی، اس لیے ان کو قالون کہنے لگ پڑے. یہ جو امام قالون تھے یہ بھی دراصل روم کے قیدیوں میں سے تھے. معلوم ہوا رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہوگی، کوئی قیدی آئے ہوں گے تو یہ بھی ان میں شامل تھے، اور پھر یہ مسلمان ہو گئے، اور پھر وہیں پر انہوں نے قرات سیکھی ہوگی، اور چونکہ بہت عمدہ اور اعلی قرات فرماتے تھے، تو جو ان کے استاد تھے امام نافع بھائی یا اسی زمانے میں امام مالک رحم اللہ تھے، ان دونوں میں سے کہتے ہیں کسی ایک نے ان کو یہ لقب دیا، تو اب یہ امام قالون کے نام سے مشہور ہیں بھائی. اور اصل نام ان کا ہے عیسیٰ بھائی، تو اصل نام ان کا عیسیٰ ہے بھائی. اور کہتے ہیں یہ بہرے تھے بھائی، بہت اونچا سنتے تھے، بہت اونچا، حتیٰ کہ ڈھول کی آواز بھی ان کو سنائی نہیں دیتی تھی بھائی، اتنے بہرے تھے بھائی. اور چنانچہ پھر قرات کیسے سیکھی؟ کہتے ہیں یہ جو ان کے استاد تھے بھائی امام نافع، امام نافع قراء سبعہ میں سے ہیں بھائی، سات قراء جو مشہور قراء ہیں ان میں سے ایک امام نافع رحمہ اللہ ہیں، یہ ان کے شاگرد تھے بھائی. اور یہ کہتے ہیں اپنا کان بالکل استاد کے منہ کے قریب رکھتے تھے بھائی، پھر ان کو آواز سنائی دیتی تھی. اور کہتے ہیں اس طرح سال ہر سال تک یہ ان کے پاس رہے، اور پورا قرآن انہوں نے زبردست طریقے سے سیکھ لیا، ان کی شہرت ہو گئی ہر طرف بھائی، دور دور سے لوگ ان کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آتے تھے. انہوں نے بہت وقت امام نافع رحمہ اللہ کے ساتھ گزارا، حتیٰ کہ کہتے ہیں پورا قرآن اور تجوید کے ساتھ سیکھنے کے بعد بھی یہ 20 سال تک ان کی خدمت میں مزید رہے بھائی. تو یہ استاد کے ہونٹوں کے بالکل قریب کان رکھتے، اور پھر ان کی تلاوت سنتے تھے اور سیکھتے تھے بھائی. اور جب یہ پڑھاتے تھے اب شاگرد قرات کر رہا ہے، تو شاگرد کے ہونٹوں کی حرکت سے وہ اس کی غلطی پکڑ لیتے تھے فوراً بھائی، और बहुत उम्दा किरात करते थे, तो इनको कालून का लकब दिया गया भाई, इमाम कालून भाई। तो कहते हैं का कालून, जैसे कि कालून है, फइन्नहु काना फिल अजम इस्म जिंसिन, इसलिए क्योंकि ये कालून का लफ्ज जो है अजमी जुबान में इसमें जिंस है। सुम्मिय बिही अहदु रुवातिल कुर्राई, मौसूम किया गया इस नाम के साथ, यानी ये नाम रखा गया अहदु रुवातिल कुर्राई, रुवात कुर्रा में से एक का, वो कुर्रा जो किरात को रिवायत करने वाले हैं उनमें से एक का नाम कालून रखा गया, तो ये इमाम कालून कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इमाम कालून रहिमहुल्ला भाई। तो कहते हैं सुम्य बिही अहदु रुवातिल कुर्राई, इस नाम के साथ मौसूम किया गया रुवात कुर्रा में से एक को, लिजौदति किराती ही, इनकी किरात के उम्दा होने की वजह से, कबल अन यतसर्रफ फीहिल अरब, कबल इसके के तसर्रुफ करें इसके अंदर अरब, यानी अरबों के तसर्रुफ करने से पहले ही उनका यह नाम रखा गया, यानी इसमें अरबी जुबान में कोई तसर्रुफ नहीं किया गया। फकअन्नहु काना अलमन फिल अजमियति, तो गोया के ये लफ्ज जो था ये अलम ही था अजमी जुबान में, यानी हकीकत में तो अलम नहीं था लेकिन गोया जैसे ये इसी तरह बन गया, जैसे अजमी जुबान में भी क्या था, आलम था, यानी नकल करते हुए कोई इसमें तब्दीली नहीं की गई। तो कहते हैं फक अन्नहु काना अलमन फिल अजमियती, तो गोया कि ये आलम था अजमी जुबान में। व इन्नमा जुइलत शर्तन लिअल्ला यतसर्रफ फीहल अरब मिस्ल तसर्रुफातिहिम फी कलामिहिम, कहते हैं ये अलमियत को शर्त करार दिया गया, लिअल्ला यतसर्रफ फीहल अरब, ताकि कहीं अरब इसके अंदर तसर्रुफ न करें, ताकि जिस लफ्ज को नकल किया जा रहा है कहीं अरब उसके अंदर तसर्रुफ न करें। मिसल तसर्रुफातिहिम फी कलामिहिम, जिस तरह के अरब तसर्रुफात करते हैं, फी कलामिहिम अपने कलाम में, कलामिहिम की हम जमीर किसको राजे, अरब को, कि जिस तरह अरब अपने कलाम में क्या करते हैं, तसर्रुफात करते हैं, कभी लफ्ज पर अलिफ लाम लाते हैं, कभी तनवीन लाते हैं और कभी उसकी इजाफत करते हैं, तो इस तरह का कोई तसर्रुफ ताकि अरब उसके अंदर न करें भाई। तो कहते हैं वह इन नमा जो इलत शर्तन, ये आलमियत को शर्त करार दिया गया, ली अल्लाह यतसर्रफ फीहल अरब, ताकि कहीं अरब उसके अंदर तसर्रुफ न करें। मिसल तसर्रुफातिहिम फी कलामिहिम, जिस तरह के अरब अपने कलाम में तसर्रुफात करते हैं, फतज़ुफु फीहिल उजमतु, तो उजमा उसके अंदर ज़ईफ हो जाएगा, तो उजमा उसके अंदर ज़ईफ हो जाएगा। फला तस्लुहु सबबन लिमन इस्सर्फी, तो उजमा उसके अंदर ज़ईफ हो जाएगा भाई, अगर अरब उसके अंदर तसर्रुफ कर देंगे तो उजमा उसके अंदर ज़ईफ हो जाएगा, अब कलीमे में सिकल नहीं रहेगा। फला तस्लुहु सबबन लिमन इस्सर्फी, तो फिर वो उजमा सलाहियत नहीं रखेगा कि वो मने सर्फ के लिए सबब बन जाए भाई, अगर अरब उसमें तसर्रुफ कर देंगे तो फिर ये गैर इंसिराफ का सबब बनने की सलाहियत नहीं। भाई गैर इंसिराफ का सबब क्यों बनता है अजमी कलिमा, क्यों उसकी, क्योंकि उसकी अदायगी अरबों के लिए दुश्वार है, और अगर अरब उसके अंदर तब्दीली कर देंगे तो फिर तो उनके लिए अदायगी दुश्वार नहीं रहेगी, सिकल खत्म हो जाएगा, तो फिर ये उजमा जो है गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनेगा। तो कहते हैं फला तस्लुहु सबबन लिमन इस्सर्फी, तो फिर ये उजमा जो है ये मन सर्फ के लिए सबब बनने की सलाहियत नहीं रखेगा। फअला हादा, तो इसी बिना पर, लव सुम्मिया बिमिस्लि लिजामिन, अगर मौसूम कर दिया जाए किसी को लिजाम जैसे लफ्ज से, अगर किसी का नाम रख दिया जाए लिजाम भाई, मैंने बताया लिजाम, लिजाम ये फारसी लफ्ज लगाम है भाई, लगाम जो घोड़े को पहनाई जाती है उसको काबू में रखने के लिए, उस पर सवारी करने के लिए, उसी लगाम के लफ्ज को अरब अपनी जुबान में ले गए और उसमें तब्दीली कर दी और उसको अब वो लिजाम पढ़ते हैं। देखो लाम को कसरा भी दे दिया और गाफ को जीम से बदल दिया। तो कहते हैं फाला हादा लौसुम्य भी मिसली लिजाम इन ला यमतन उसर्फ, इसीलिए अगर लिजाम जैसे लफ्ज के साथ किसी को अगर मौसूम कर दिया जाए, यानी किसी का नाम लिजाम रख दिया जाए, तो ला यमतनिउ सर्फुहु, तो उसकी सर्फ मुमतने नहीं, यानी उसको गैर मुनसरिफ नहीं पड़ेंगे। लिअदमी अलमियति ही फिल उजमति, बवजह अलमियत न होने के फिल उजमति, उजमा में, उजमा में अलमियत न होने की वजह से, क्योंकि देखो इसमें तो अरबों ने तब्दीली कर दी भाई। वशर्तु हस्सानी अहदुल अमरैनी, और उजमा की दूसरी शर्त जो है अहदुल अमरैन, दो चीजों में से एक चीज होनी चाहिए। कौन सी दो चीजें? या कलिमा तीन हरूफ से जायद पर मुश्तमिल हो, या अगर तीन पर मुश्तमिल है तो दरमियान वाला मुतहर्रिक होना चाहिए। तो कहते हैं वशर्तु हस्सानी अहदुल अमरैनी, और उजमा की दूसरी शर्त जो है दो चीजों में से एक चीज का होना, तहर्रुकुल हर्फिल औसती, भाई मतन में था तहर्रुकुल औसती, और साहिब जामी ने दरमियान में हर्फ का लफ्ज निकाल दिया, ऐ तहर्रुकुल हर्फिल औसती, बतलाना ये चाहते हैं कि अल औसत ये सिफत है और इसका मौसूफ अल हर्फ महजूफ है, कि दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक होना चाहिए। अभी ज्यादतु अला सलासती, या तीन हरूफ पर जायद होना चाहिए कलीमा भाई। तो कहते हैं ऐ अला सलासती अहरूफिन, मतन में आया था अभी ज्यादतु अला सलासती, तीन पर ज्यादा हो भाई। तीन पर ज्यादा क्या माना? आगे शारह जामी तफसीर कर रहे हैं, ऐ अला सलासती अहरूफिन, कि अस सलासा से मुराद सलासतु अहरूफ है भाई, तीन हरूफ मुराद हैं। ऐ अला सलासती अहरूफिन, यानी तीन हरूफ पर ज्यादा होना चाहिए भाई। क्यों ये तीन, ये शर्त क्यों लगाते हैं? कहते हैं ली अल्ला युआरिजल खिफत अहद सबबैनी, ताकि ये जो खिफत है ये दो सबबों में से एक के मुकाबिल न हो जाए, दो सबबों में से एक के मुकाबिल न हो जाए। भाई देखिए ये जो असबाब मना सर्फ हैं इनकी वजह से कलीमे में सिकल पैदा होता है, तो अगर उजमा जो है उसमें अलमियत तो हो लेकिन तीन हरूफ से ज्यादा नहीं है या दरमियान वाला मुतहर्रिक नहीं है तो फिर तो कलीमे में कोई सिकल आया ही नहीं, तो एक सबब तो आ जाएगा लेकिन खुद उजमा की वजह से कलीमे में कोई सिकल, भाई कलीमे में कोई से दो सबब आएंगे उनमें से एक उजमा होगा, दूसरा मसलन अलमियत है, तो अलमियत की वजह से तो सिकल आ गया लेकिन खुद उजमा की वजह से कोई सिकल नहीं आया। तो जब ये दूसरी शर्त पूरी नहीं होगी तो कलीमा खफीफ है, तो इसकी खिफत वो जो दूसरा सबब है मसलन आलमियत उसके मुकाबिल बन जाएगी, वो तो सिकल पैदा कर रहा है लेकिन ये दूसरी तरफ सिकल नहीं है बल्कि खिफत है, तो फिर कलीमा गैर मुनसरिफ नहीं बनेगा बल्कि मुनसरिफ रहेगा भाई। ये माना है लि अल्ला युआरिजल खिफतु अहद सबबैन, ताकि ये जो खिफत है ये मुकाबिल ना हो जाए दो सबबों में से एक के। याद रखना इमाम सीबोवे रहिमहुल्ला और दीगर नहवी हजरात वो सिर्फ ज्यादत अला सलासा की शर्त लगाते हैं, उजमा के अंदर एक अलमियत होनी चाहिए और एक ज्यादत अला सलासा, तीन हरूफ से जायद होना चाहिए, दरमियान वाले हर्फ के मुतहर्रिक होने का वो एतबार नहीं करते। चुनाचे आगे शतर का लफ्ज आएगा, शतर का लफ्ज साहिब काफिया के नजदीक वो गैर मुनसरिफ है क्योंकि साहिब काफिया दरमियान वाले हर्फ के मुतहर्रिक होने का एतबार करते हैं, लिहाजा उनके नजदीक शतर गैर मुनसरिफ, जबकि इमाम सीबुवे के नजदीक उजमा में शर्त है कि तीन हरूफ से ज्यादा होना चाहिए और इब्राहिम ये तो तीन हरूफ से ज्यादा है लिहाजा इसके अंदर उजमा मुअसर होगा ये गैर मुनसरिफ होगा, लेकिन शतर तो तीन हरूफ से ज्यादा नहीं लिहाजा उनके नजदीक ये शतर का लफ्ज गैर मुनसरिफ नहीं है बल्कि मुनसरिफ है भाई। बात समझ में आ गई। आगे देखिए कहते हैं फनूह मुनसरिफ, उन तो नूह का लफ्ज जो है मुनसरिफ है। हाजा तफरी उन बिन नजरी इल शर्त सानी, ये तफरी है शर्त सानी की तरफ नजर करते हुए, किसकी तरफ भाई? दो शर्तें जिक्र की साहिब काफिया ने, एक शर्त यह कि अलम होना चाहिए, दूसरी शर्त यह कि तीन हरूफ से ज्यादा हो या दरमियान वाला मुतहरिक हो, तो ये जो नुह की तफरी की ये शर्त सानी पर है। किस पर? शर्त सानी पर तफरी कर रहे हैं कि नूह के अंदर शर्त सानी नहीं पाई जा रही लिहाजा ये मुनसरिफ है, نوح حالانکہ عجمی نام ہے. پہلی شرط پوری عالمیت ہے لیکن دوسری شرط پوری نہیں کہ تین سے زیادہ ہونا چاہیے یا درمیان والا متحرک ہونا چاہیے, تو دوسری شرط پوری نہیں, تو لہذا نوح کا لفظ منصرف ہے. لفظ نوح کے بارے میں یاد رکھیں, علامہ زمخشری بھائی جن کی کتاب مفصل سے یہ کافیہ ماخوذ ہے بھائی, علامہ زمخشری کے نزدیک نوح جو ہے اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز, غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں ہند پر بھائی. ہند آپ نے پڑھا تھا تانیث معنوی, تانیث معنوی وہ غیر انصراف کا سبب بنتی ہے جوازی طور پر. وجوباً کب سبب بنے گی؟ جب کلمہ تین حروف سے زائد ہو یا درمیان والا متحرک ہو یا کم از کم عجمی ہو, ان تین میں سے کوئی ایک بات پوری ہو تو پھر تانیث معنوی غیر انصراف کا سبب بنتی ہے وجوباً. لیکن ہند کے اندر, ہند مؤنس کا نام تو ہے, تانیث معنوی تو ہے لیکن دوسری شرط پوری نہیں. عالمیت والی شرط تو پوری ہے, تانیث معنوی میں ایک شرط عالمیت تھی, عالمیت والی شرط تو پوری ہے, ہند بھی نام ہے لیکن دوسری شرط پوری نہیں. نہ تو یہ تین حروف سے زائد ہے, نہ درمیان والا متحرک ہے, اور نہ ہی یہ عجمی نام ہے, تو اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز. آپ چاہیں تو تانیث معنوی کا اعتبار کریں اور آپ چاہیں تو نہ کریں. آپ تانیث معنوی کا اعتبار کرتے ہیں تو ایک عالمیت ایک تانیث معنوی غیر منصرف پڑھیں, اور آپ چاہیں تو تانیث معنوی کا اعتبار نہ کریں کیونکہ کلمے کے اندر کوئی ثقل آیا ہی نہیں ہے, تو پھر صرف عالمیت ہے, تانیث معنوی گویا ہے ہی نہیں, تو پھر اس کو منصرف پڑھ دیں. تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں نوح بھی اسی طرح ہے, نوح بھی اسی طرح ہے, اس کے اندر عجمہ بھی ہے اور عالمیت بھی ہے لیکن عجمہ کی وجہ سے کوئی ثقل نہیں آیا. آپ چاہیں اس عجمہ کا اعتبار کریں چاہے اعتبار نہ کریں. اگر عجمہ کا اعتبار کرتے ہیں تو نوح کو غیر منصرف پڑھیں, ایک عالمیت ایک عجمہ, اور آپ چاہیں تو عجمہ کا اعتبار کریں ہی نہ کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی ثقل ہی نہیں آیا کلمے میں. جب ثقل نہیں آیا تو صرف ایک سبب عالمیت ہے, عجمہ گویا ہے ہی نہیں. جب عجمہ ہے ہی نہیں, ایک ہی سبب ہے, تو کلمے کو کیا پڑھو؟ منصرف. یہ کس کے نزدیک ہے؟ علامہ زمخشری کے نزدیک. لیکن صاحب کافیہ کے نزدیک نوح جو ہے وہ منصرف ہی ہے, اس کو غیر منصرف نہیں پڑھ سکتے. اور آگے وجہ بھی بتلائیں گے کہ بھئی دیکھو آپ نوح کو ہند پر قیاس نہیں کر سکتے. ہند کے اندر کون سا سبب تھا؟ تانیث معنوی, اور نوح کے اندر کیا ہے؟ عجمہ. لیکن تانیث معنوی کو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ قوت حاصل ہے عجمہ کے مقابلے میں, دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. کس طرح؟ کہ اس کو تھوڑی سی قوت حاصل ہے. بھئی دیکھو تانیث معنوی وہ بھی معنوی چیز, یہاں پر عجمہ بھی کیا ہے, لفظوں میں تو کوئی اثر ہے نہیں, معنوی چیز ہے, لیکن تانیث معنوی کو کچھ قوت حاصل ہے. کس طرح قوت حاصل ہے؟ کہ بھئی اس کے اندر جو تا مقدر ہوتی ہے کبھی کبھی وہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے, جیسے اس کی تصغیر نکالیں تو وہ تا آ جاتی ہے, جیسے ہند کی تصغیر نکالیں تو وہ حنیدتن آتی ہے. دیکھو وہ تا ظاہر ہو گئی, تو اس میں وہ تا کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جاتی ہے, جبکہ نوح کے اندر جو عجمہ ہے وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتا, تو یہ اس کے مقابلے میں ضعیف ہوا, لہذا اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے. تو ہند کے اندر تو دونوں وجہیں پڑھنا جائز, لیکن جو نوح ہے یہ منصرف ہی ہے, اس کو غیر منصرف نہیں پڑھیں گے. یہ کس کی رائے ہے؟ صاحب کافیہ کی رائے ہے. جبکہ علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ نوح بھی ہند کی طرح ہے, اس کو بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں فنوح منصرف, تو نوح کا لفظ جو ہے منصرف ہے. ھذا تفریع بالنظر الی الشرط الثانی, یہ تفریع ہے شرط ثانی کی طرف نظر کرتے ہوئے. فانصراف نوح انما هو الانتفاء الشرط الثانی, پس نوح کا منصرف ہونا وہ شرط ثانی کے منتفی ہونے کی وجہ سے ہے, یعنی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. وہذا اختیار المصنفی, اور یہ مصنف کا اختیار ہے, مصنف نے اس بات کو اختیار کیا ہے. لأن العجمة سبب ضعيف, اس لیے کیونکہ عجمہ سبب ضعیف ہے. لأنه امر معنوي, اس لیے کیونکہ یہ ایک معنوی چیز ہے. عجمہ کیا ہے؟ معنوی چیز ہے, لفظوں میں اس کی کوئی علامت وغیرہ نہیں. तो ये एक मानवी चीज है। फला यजूज एतबारुहा मा सुकून अल औसती, लिहाजा जायज नहीं है कि उजमा का एतबार किया जाए मा सुकून अल औसती, दरमियान वाले हर्फ के साकिन होने के साथ, दरमियान वाले हर्फ के साकिन होते हुए। वह अम्मत तानीसु, और बाकी जो तानीस है, फइन्न लहू अलामतन मुकद्दरतन तज़हरु फी बाज़ तसर्रुफाती, तो तानीस मानवी जो है उसके लिए ऐसी अलामत है मुकद्दरतन जो मुकद्दर होती है, और तज़हरु फी बाज़ तसर्रुफात, और बाज़ तसर्रुफात में वो जाहिर भी हो जाती है। फलहू नौउ कुव्वतिन, लिहाजा तानीस मानवी को एक नौ की, एक किस्म की कुव्वत हासिल है। फजाज़ा अन युअतबरा मा सुकून अल औसती व अल्ला युअतबरा, तो तानीस मानवी के अंदर जायज है कि उसका एतबार किया जाए मा सुकून अल औसती, दरमियान वाले हर्फ के साकिन होने के साथ। व अल्ला युअतबरा, और यह भी जायज है कि उसका एतबार न किया जाए। उसमें तो दोनों सूरतें हैं, लेकिन नूह के अंदर दोनों सूरतें जायज नहीं। ये किसकी राय है? साहिब काफिया की। भाई फइन कुलता, यहां से एक एतराज जिक्र करेंगे। इधर देखिए भाई, एतराज समझ लो। एतराज यह होता है कि पीछे माहो जूर गुजरे थे, माहो व जूर, ये दोनों नाम हैं दो शहरों के, एक शहर का नाम माह, एक का नाम जूर। और देखो इसमें तानी से मानवी है, और तानी से मानवी, तानी से मानवी के अंदर दो शर्तें थी, एक आलमियत, और माहजूर में आलमियत मौजूद है, और दूसरी शर्त क्या थी कि तीन हरूफ से जायद हो, या दरमियान वाला मुतहरिक हो, या कम अज कम लफ्ज क्या होना चाहिए? अजमी। तो ये माहजूर भी अजमी है, तो दूसरी शर्त भी पूरी, तो लिहाजा माहजूर को गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब है, माहजूर को गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब है। भाई तो सवाल पैदा हुआ कि माहजूर इसके अंदर तो आपने उजमा का एतबार किया या नहीं? तानी से मानवी के अंदर पहली शर्त क्या थी? अलमियत। दूसरी शर्त क्या थी? तीन से जायद हो, या दरमियान वाला मुतहरिक हो, या अजमी होना चाहिए। देखा यहां उजमा का आपने एतबार कर लिया, और उसकी वजह से क्या हुक्म लगा दिया कि माहजूर का गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब है, उसको मुनसरिफ नहीं पढ़ सकते, हालांकि माहजूर में भी दरमियान वाला हर्फ साकिन है। इश्काल समझ में आ रहा है? तो नूह के अंदर भी दरमियान वाला हर्फ साकिन है, तो यहां पर भी उजमा का एतबार करना चाहिए। भाई इश्काल समझ में आया? तो जवाब देंगे कि भाई माहजूर जो है उसके अंदर गैर इंसिराफ के जो दो सबब हैं, एक आलमियत है, एक तानीस है, उजमा सबब नहीं है। उजमा सिर्फ तानीस मानवी को कुव्वत दे रहा था, मुस्तकिल सबब नहीं है। माहजूर में दो सबब कौन से? एक अलमियत, अलम है, नाम है शहरों के, दूसरा क्या? तानी से मानवी है। तवज्जो है, तानी से मानवी। हां, तानी से मानवी के अंदर क्या शर्त थी? अलमियत होनी चाहिए, वो शर्त भी पूरी। और दूसरी शर्त क्या थी? कि तीन से जायद हो, या दरमियान वाला मुतहरिक हो, या लफ्ज क्या होना चाहिए? आजमी होना चाहिए। तो यह आजमी होना शर्त था किसके लिए? तानी से मानवी के लिए। भाई तो यहां पर माहजूर के अंदर उजमा का एतबार किया, वो अलग मुस्तकिल सबब नहीं बन रहा। यहां बात समझ में आ रही है? माहजूर में दो सबब कौन से हैं? अलमियत है, और दूसरा तानी से मानवी है। हां, उजमा इसी तानी से मानवी को कुव्वत दे रहा था, खुद ये सबब नहीं बन रहा गैर इंसिराफ का। तो फर्क दोनों में यह है कि माहजूर में उजमा वो सिर्फ तानी से मानवी को कुव्वत देने के लिए उसका एतबार किया गया है, और नूह के अंदर अगर उजमा को सबब बना दिया जाए, फिर तो इसको मुस्तकिल सबब बनाना पड़ेगा कि नूह के अंदर फिर दो सबब कौन से होंगे? एक अलमियत, एक उजमा। देखा, उजमा को मुस्तकिल सबब करार देना पड़ेगा। तो लिहाजा उजमा में जब दरमियान वाला हर्फ साकिन हो, फिर यह मुस्तकिल सबब नहीं बन सकता। हां, दूसरे सबब को कुव्वत दे सकता है, लेकिन खुद सबब नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? कहते हैं फइन कुलता, अगर आप यह एतराज करें, कदअतु बिरतिल उजमतु फी माह व जूरा, के तहकीक उजमा का एतबार किया गया माह और जूर में, मा सुकूनिल औसती फी मा सबका, बावजूद दरमियान वाले हर्फ के साकिन होने के, फी मा सबका, वो जो मा कबल में बात गुजर गई भाई तानी से मानवी के अंदर, फलिम अलम तो तबर हा हुना, तो फिर यहां पर उसका एतबार क्यों नहीं किया गया? कुल ना हम कहते हैं, जवाब देने लगे, कहते हैं कुल ना हम कहते हैं, एतबार उहा फी मा सबका, कि उजमा का जो एतबार था फी मा सबका मा कबल के अंदर जो गुजर गया उसके अंदर, इन नमा हुआ लि तकवियती सबबैनी आखिरैनी, वो कुवत देने के लिए था दो दूसरे सबबों को, लि अल्ला युकाविम सुकूनुल औसती अहदहुमा, ताकि कहीं मुकाबिल ना हो जाए सुकूनुल औसती, दरमियान के दरमियान वाले हर्फ का साकिन होना, ताकि दरमियान वाले हर्फ का साकिन होना ये मुकाबिल ना हो जाए अहदहुमा, उन दोनों में से एक के। भाई देखिए माहजूर, माहजूर में एक तो अलमियत वाला सिकल आ गया, तवज्जो है, दूसरा सिकल तानी से मानवी की वजह से आना था, लेकिन तानी से मानवी वो भी एक मानवी चीज है तो उसकी वजह से सिकल नहीं था, तो उसके साथ किसका एतबार कर लिया, उजमा का, तो अब उजमा की वजह से उस तानी से मानवी में कुवत आ गई, अब जो खिफत थी अब वो दूसरे सबब का जो सिकल आ रहा था यानी आलमियत का उसके मुकाबिल ना हो सकी, तो दो सबब बन गए। फिर देखिए भाई कहते हैं कुलना एतबारुहा फीमा सबका इन नमा हुआ लि तकवियती सबबैनी आखिरैनी, के उजमा का जो एतबार किया गया मा कबल के अंदर वो दो दूसरे सबबों को कुवत देने के लिए है, लि अल्ला युकाविमा, कावमा युकाविमो के माने मुकाबिल होना मुआरिज होना, लि अल्ला युकाविमा सुकूनुल औसती अहदहुमा, ताकि दरमियान वाले हर्फ का साकिन होना ये मुआरिज ना हो जाए अहदहुमा, उन दो सबबों में से एक के यानी उसके सिकल के ये मुआरिज ना हो जाए, फला यल्ज़मु मिन इतिबारिहा लितक़वियति सबबिन आखरा, लिहाजा किसी दूसरे सबब को कुव्वत देने के लिए इसका एतबार करने से यह लाजिम नहीं आता। तर्जमे पर नजर है फला यल्ज़मु मिन इतिबारिहा लितक़वियति सबबिन आखरा, लिहाजा किसी दूसरे सबब को कुव्वत देने के लिए उजमा का एतबार करने से यह लाजिम नहीं आता कि एतबारु सबबियती हा बिल इस्तिकलाल, कि इसके सबब होने का एतबार किया जाए बिल इस्तिकलाल, किसी दूसरे सबब को तकवियत देने के लिए उजमा का एतबार करने से यह लाजिम नहीं आता कि मुस्तकिलन इसको भी इसके भी सबब होने का एतबार किया जाए। भाई जब दरमियान वाला हर्फ साकिन है तो फिर ये इसको मुस्तकिलन सबब शुमार नहीं किया जाएगा, इसमें इतनी कुव्वत नहीं है। भाई कहते हैं वशा तारु, और शतर जो है वह हुआ स्मु हिस्निन बि दियारी बकरिन, हिस्नुन हा स्वाद और नून, ये किलाए को कहते हैं भाई, वो जो फौजी इमारत बनाई जाती थी मजबूत जिसके अंदर फिर फौज रहती थी ताकि कोई और हमला आवर आए तो फौज अंदर रहकर उसका मुकाबला कर सके, तो कहते हैं वशा तरु हुआ हुआ स्मु हिस्निन बि दियारी बकरिन, शतर ये एक किले का नाम है दियारे बकर में, भाई दियारे बकर कोई इलाका होगा तो उसमें एक किले का नाम है, तो शतर इसमें एक सबब क्या आलमियत और दूसरा सबब क्या उजमा है, उजमा और उजमा की शर्त भी पूरी है, दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक है, वह इब्राहिम और इसी तरह इब्राहिम का लफ्ज जो है मुमतनिउन सर्फ हुमा, इन दोनों की सर्फ मुमतनिउ है, लिवजूद शर्त सानी फीहिमा, इनमें दूसरी शर्त पाए जाने की वजह से, फइन्न फी शतरा तहर्रुकल औसती वफी इब्राहिम ज़ियादत अला सलासती, इसलिए क्योंकि शतर के अंदर दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक है और इब्राहिम में जो है वो तीन हुरूफ से ज्यादा है, वह इन्नमा खस्सत तफरीअ बिशर्ति सानी। सवाल फनूहुन मुनसरिफुन व शतरु व इब्राहिम मुमतनिउन, साहिब जामी ने आपको बतलाया कि ये साहिब काफिया तफरीअ कर रहे हैं शर्त सानी पर, किस पर शर्त सानी क्या थी, दरमियान वाला हर्फ मुतहरिक हो या तीन हर्फ से ज्यादा हो, नूहुन इसमें ये दोनों नहीं लिहाजा ये मुनसरिफ है, और शतर और इब्राहिम में इन दोनों में से एक है तो ये क्या है गैर मुनसरिफ। सवाल ये कि शर्त सानी पर तो तफरीअ की, उसके लिए तो आगे मिसालें जिक्र की और शर्त अव्वल अलमियत की जो शर्त लगाई थी उस पर तफरिया नहीं की, उसके लिए भी तो मिसालें जिक्र करनी चाहिए थी। तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब जामी और आपको बतलाएंगे कि भाई यहां साहिब काफिया कोई उनका मकसद मिसालें देना नहीं है, मिसालें देना उनका मकसद, वो सिर्फ बतलाना चाहते हैं कि लफ्ज नूह जो है इसमें हक यह है कि इसको मुंसरिफ ही पढ़ेंगे। अल्लामा जमखशरी तो फरमाते हैं कि नूह को मुंसरिफ भी पढ़ सकते हैं और गैर मुंसरिफ भी, लेकिन हक यह है कि नूह को मुंसरिफ ही पढ़ेंगे भाई। तो लिहाजा नूह के अंदर जो हक था उनके नजदीक उस पर मुतनब्बिह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नूह की मिसाल जिक्र की कि देखो नूह के अंदर दूसरी शर्त में से कोई चीज नहीं, तो लिहाजा नूह को मुनसरिफ पढ़ेंगे। तो नूह के अंदर दूसरी शर्त है या नहीं है? नहीं है। तो जब न होने पर नूह की मिसाल पेश कर दी तो फिर होने पर कि दूसरी शर्त जिसमें पाई जाए, इसलिए फिर आगे शतर और इब्राहिम को भी जिक्र कर दिया कि इसके अंदर दूसरी शर्त पाई जा रही है, वरना असल मकसद यहां पर मिसालें जिक्र करना उनका मकसद नहीं था भाई। तो कहते हैं वह इन नमा खसत तफरी अभी शर्त सानी, और साहिब काफिया ने खास किया तफरी को दूसरी शर्त के साथ, लि अन गर्जहु तंबीहु अलामा हुअल हक इंदहु, इसलिए क्योंकि उनका मकसद जो है वह मुतनब्बे करना है उस बात पर जो हक है इनके नजदीक। भाई क्या वो हक क्या है? मीन के जरिए बयान कर रहे हैं पीछे जो मा हुअल हक आया वो हक क्या है। कहते हैं मिन इंसिराफी नहवी नूहिन, यानी कि नूह जैसे लफ्ज का मुनसरिफ होना। व लिहाजा कद्दमन सिराफहु, इधर देखिए नूह उसमें दूसरी शर्त नहीं है और शतर और इब्राहिम में दूसरी शर्त है। तो कहते हैं भाई अगर तफरीअ करना ही मकसद होता तो फिर पहले जिसमें शर्त पूरी है तो शतर इब्राहिम को पहले जिक्र करना चाहिए था, और जिसके अंदर शर्त पूरी नहीं है यानी नूह उसको बाद में जिक्र करना चाहिए था। लेकिन कहते हैं हमने आपको बता दिया कि यहां वो मिसालें जिक्र करना उनका मकसद ही नहीं है, वो सिर्फ नूह के अंदर जो हक मजहब था उसको बयान करना चाहते हैं, इसीलिए नूह के लफ्ज को मुकदम कर दिया। अगरचे नूह के अंदर तो शर्त आदमी है तो उसको तो आखिर में जिक्र करना चाहिए था। कहते हैं वलिहादा कद्दमन सिराफहू, और इसीलिए मुसन्निफ ने नूह के मुनसरिफ होने को मुकदम कर दिया। मा अन्नहु मुतफर्रिउन अला इंतिफाइ शर्त सानी, बावजूद इसके कि नूह जो है वो मुतफर्रे हो रहा है शर्त सानी के मुंतफी होने पर यानी उसके न होने पर। वल औला, और औला तो यह है, ज्यादा लायक तो यह है, तकदीम उमा हुआ मुतफर्रिउन अला वजूदी ही, और औला तो यह है कि मुकदम किया जाए उसको जो मुतफर्रे हो रहा है दूसरी शर्त के वजूद पर। कमा ला यख्फा, जैसे कि यह बात मख्फी नहीं है, यह बात जाहिर है भाई, पहले वजूदी मिसाल जिक्र करते फिर आदमी जिक्र करनी चाहिए थी भाई। बात समझ में आ गई। वालम अन्ना अस्मजी, यहां से एक मजीद फायदा जिक्र कर रहे हैं, चूंकि नूह और इब्राहिम दो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम आ गए, तो अब साहिबे जामी आपको बतला रहे हैं कि कौन कौन से अंबिया के नाम मुनसरिफ हैं और कौन से गैर मुनसरिफ हैं। तो कहते हैं वालम, तू जान ले, अन्ना अस्मा अल अंबिया अलैहिमुस्सलाम मुमतनिउन अनि सर्फ़ इल्ला सित्ततन, कि अंबिया के जो नाम हैं वो सर्फ से मुमतनिउ हैं यानी गैर मुनसरिफ हैं। इल्ला सित्ततन, मगर छह नाम हैं वो मुनसरिफ हैं, बाकी सारे गैर मुनसरिफ। वो छह कौन से हैं? कहते हैं मुहम्मदुन व सालिहुन व शुएबुन व हूदुन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मुहम्मद, सालिह, शुएब और हूद भाई, लिकौनिहा अरबियतन, ये मुनसरिफ हैं भाई। भाई कुल छह मुनसरिफ हैं, उनमें से चार ये हो गए भाई। ये क्यों मुनसरिफ? कहते हैं लिकौनिहा अरबियतन, बवजह इनके अरबी होने के। ये सारे नाम क्या हैं? अरबी हैं। व नूह व लूतुन लिखिफतिहिमा, और नूह और लूत भाई अलैहिमस्सलातु वस्सलाम, ये दोनों ये आजमी नाम हैं, लेकिन ये मुनसरिफ हैं लिखिफतिहिमा, खफीफ होने की वजह से, क्योंकि नूह में भी दरमियान वाला हर्फ साकिन है और लूत के अंदर भी दरमियान वाला हर्फ साकिन है। वकील और कहा गया है कि इन्नहूदन का नूहिन के हूद भी नूह की तरह है। तवज्जो है, इन्होंने तो जिक्र किया कि हूद जो है अरबी नाम है, नूह और लूत सिर्फ ये गैर अरबी हैं, लेकिन बाज उलमा फरमाते हैं कि इन्नहूदन का नूहिन के हूद जो है ये भी नूह की तरह है, यानी ये भी अजमी नाम है, ये भी। और फिर ये मुनसरिफ क्यों है? इसमें भी वही वजह के दरमियान साकिन है, तो ये खिफत की वजह से मुनसरिफ है। तो कहते हैं वकील इन्नहूदन का नूहिन, और कहा गया है कि हूद जो है वह नूह की तरह है। लिअन्ना सीबुवह क़ारनहू माअहू, इसलिए क्योंकि इमाम सीबुवह जो हैं उन्होंने क़ारनहू, उन्होंने हूद को मिलाया है माअहू ऐ माअ नूह। भाई क़ारनहू की हा ज़मीर राजे है हूद को, और माअहू की हा ज़मीर राजे है नूह को। लिअन्ना सीबुवह ही क़ारनहू माअहू, इसलिए क्योंकि इमाम सीबुवह ने क़ारनहू हूद को मिलाया है माअहू ऐ माअ नूह, किसके साथ? नूह के साथ। इमाम सीबुवह ने अपनी किताब के अंदर हूद को नूह के बाद जिक्र किया है, किसके बाद? हूद को नूह के बाद जिक्र किया है। मालूम हुआ हूद किसकी तरह है? नूह की तरह, यानी आजमी है। भाई इमाम सीबुवह, भाई इंसान हैरान होता है। कहते हैं इनका इंतकाल 32 साल की उम्र में हुआ भाई, और बाज कहते हैं कि 40 साल की उम्र में, समझ में, तकरीबन यूं समझो जवानी ही के अय्याम थे भाई, तो 32 से 40 इसी के अंदर इनका इंतकाल हुआ, और इनकी बात इल्म नहव में पहाड़ की तरह समझी जाती है भाई। आगे देखिए वयुअय्यिदुहु मा युकालु मिन अन्न लअरबा, वयुअय्यिदुहु मा युकालु, ये मा फाइल है युअय्यिदु का भाई, बात समझ में। वयुअय्यिदुहु मा युकालु मिन अन्नल अरबा मिन वुल्दि इस्माईल अलैहि सलातु वस्सलाम, और कहते हैं इसकी ताईद होती है वो जो कहा जाता है, यानी ये कि जो अरब हैं, मिन वुल्दि इस्माईल, ये वुल्द पढ़ना भाई, वलद नहीं, वलद की जमा वुल्द है भाई, कि अन्नल अरब मिन वुल्द इस्माईला, कि अरब जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अरब कहते हैं जो इमाम सीबुवह ने जिक्र किया है, इसकी ताईद इस बात से भी होती है जो कहा जाता है कि अरब जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। मालूम हुआ अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद हैं, पहले नहीं। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वो तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे हैं भाई। मालूम हुआ हूद भी किसकी तरह है? नूह की तरह है, अरबी लफ्ज नहीं है बल्कि आजमी है भाई। तो कहते हैं वयुअय्यिदुहु मा युकालु मिन अन्नल अरब मिन वुल्द इस्माईल, और इसकी ताईद होती है वो जो कहा जाता है कि अरब जो है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। वमन का नकब लजालिका फलई सभी अरबीन, और वो जो इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले थे वो अरबी नहीं हैं। वहूद उन कबल इस्माईल अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम, और हजरत हूद जो हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले थे। फी मा युस्करु, उन तवारीख में जिनको जिक्र किया जाता है, यानी तारीख की किताबों में जो जिक्र किया जाता है, बात समझ में आ गई। फी मा यूज करो, उसके अंदर जो जिक्र किया जाता है, यानी वो तारीखें जो जिक्र की जाती हैं अंबिया वगैरह और इनके अहवाल की, उससे पता चलता है कि हूद अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे हैं। तो हूद को किसके साथ होना चाहिए? नूह के साथ होना चाहिए, यानी अजमी नाम है। तो कहते हैं फकान का नूहिन, तो फिर यह किसकी तरह हुआ? नूह की तरह हुआ भाई। अच्छा भाई, इन्होंने यहां जिक्र किया भाई कि अंबिया के नाम जो हैं वो गैर मुनसरिफ हैं सिवाय छह नामों के, छह नाम जिक्र किए, जबकि मुहशी यहां फरमाते हैं कि छह नाम नहीं बल्कि आठ नाम हैं भाई, आठ नाम। और वो इसमें शामिल फरमाते हैं हजरत शीसा अलैहिस्सलाम, शीन या और सा भाई, शीसा अलैहिस्सलाम, और इसी तरह हजरत उजैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो मुहशी फरमाते हैं कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम इनको भी शामिल करना चाहिए था, ये भी मुनसरिफ हैं। तो मुनसरिफ असमा जो हैं अंबिया के, उनकी तादाद छह नहीं है बल्कि आठ है भाई, आठ है। तो वालिद साहब रहमहुल्लाह से कोई बात गालिबन मैंने कोई बात पूछी और किताब का यही मकाम था, और तो मुझे याद नहीं कि क्या बात पूछी और क्या उन्होंने जिक्र फरमाया। हां, उनकी एक छोटी सी बात मुझे याद है कि ये अंबिया के नाम के बारे में जिक्र करते हुए हाशिये को उन्होंने देखा तो मुस्कुराने लग पड़े और फरमाया कि हाशिये वाले भी मजाक कर रहे हैं। हाशिये वाले दरअसल हाशिये में फरमाते हैं कि दो और अंबिया के नाम भी यहां जिक्र होने चाहिए थे, और नहव की तमाम बड़ी किताबों में यही छह नाम जिक्र हैं। नहव की तमाम बड़ी किताबों में यही छह नाम जिक्र हैं, हालांकि दो नाम और भी थे। और आगे वो फरमाते हैं कि अगर मैं ये जिक्र न करता कि ये दो नाम और भी हैं, वो हाशिये वाले फरमा रहे हैं, अगर मैं ये जिक्र न करता कि ये दो नाम और भी हैं तो करीब था नहवी हजरात का, नहवी उलमा का शायद इस पर इजमा ही हो जाता कि यही छह नाम है, हालांकि छह तो नहीं है बल्कि आठ हैं। तो वाली साहब रहमतुल्लाह ने जब हाशिये ये बतलाते हुए हाशिये पर उनकी नजर पड़ी तो मुस्कुराने लग पड़े और फरमाने लगे कि हाशिये वाले भी मजाक कर रहे हैं कि करीब था इजमा हो जाता अगर मैं न बतलाता। भाई बात समझ में आ गई जी, चलिए बस करें बस भाई। हादा हुल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।